आगे सबक देखिए भाई, फसलुन फिल हिर्ज़ वल अख्ज़ मिन्हु वमन सरका मिन अबवैहि औ वलदिहि औ ज़ी रहिमिन महरमिन मिन्हु लम युक्ता फल अव्वल वहुव अल विलादु लिल बुसूतति फिल माल व फिद दुखूल फिल हिर्ज़ والثاني للمعنى الثاني ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها. भाई गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको वो चीजें बतलाई थी जिनके अंदर हाथ काटा जाएगा और इसी तरह वो चीजें जिनके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा. सबसे पहले साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि वो चीजें जो दारुल इस्लाम में मुबाह होकर पाई जाती हैं, यानी जो भी उनको हासिल कर ले वो उनका मालिक बन जाता है, जैसे घास है, लकड़ियां हैं, शिकार वगैरह, तो वो चीजें जो दारुल इस्लाम में मुबाह होकर पाई जाती हैं और जिन्हें मामूली समझा जाता है उनके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा. और बतलाया था कि इसके अंदर असल जो है वह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा की हदीस है. हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में मामूली चीजों के अंदर हाथ नहीं काटा जाता था. और नीज वजह यह है कि इन चीजों के अंदर हिफाजत नाकिस होती है. ये जो लकड़ियां हैं, घास हैं, शिकार वगैरह, इनके अंदर हिफाजत नाकिस होती है. यहां तक कि इन लकड़ियों वगैरह को घर के दरवाजे पर ही अमूमन लोग डाल दिया करते हैं. और नीज जो परिंदा और शिकार वगैरह है उनके अंदर भी हिफाजत नाकिस है, इसलिए क्योंकि वो तो जैसे ही हाथ से निकलेगा वो फिर भाग जाएगा या उड़ जाएगा भाई, तो इनके अंदर हिफाजत नाकिस है. और नीज इस वजह से कि शिकार जो है उसके अंदर शिरकत आम्मा है भाई. हदीस में आता है कि जो शिकार कर ले वो शिकार उसी का है भाई. तो हदीस में आता है जो शिकार कर ले वो शिकार उसी का है. मालूम हुआ ये शिकार वगैरह जो है इनके अंदर शिरकत आम्मा है, तमाम मुसलमान इसके अंदर शरीक हैं और जो इनको पकड़ लेगा वो इनका मालिक बन जाएगा. तो इन चीजों की वजह से शुबा पैदा हो जाता है और हद जो है वो तो शुबे से साकित हो जाती है. और फिर साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध, गोश्त और ताजा फल वगैरह, उनके अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला क़त्अ फी समरिन वला कसरिन, के फल के अंदर भी कता नहीं है और इसी तरह कसर के अंदर भी कता नहीं है. अब कसर से क्या मुराद है? साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि कसर या तो ये जुम्मार का नाम है, जबकि बाजों ने कहा ये वदी का नाम है. जुम्मार मैंने बतलाया कि ये खजूर का जो तना है इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर तने को काटा जाए तो इसके अंदर एक सफेद रंग की चर्बी नुमा नरम चीज होती है, और जब खजूर का दरख्त गिरा दिया जाए तो लोग उमूमन इसे निकालकर खाते हैं भाई, तो उसे जुम्मार कहते हैं भाई. जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि कसर से मुराद वदी है भाई, और वदी जो है वो खजूर के छोटे पौधों को कहते हैं. मैंने आपको बतलाया था कि खजूर के छोटे पौधे जो हैं उनको भी बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, और फिर जब वो कुछ थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको निकालकर दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है. तो हदीस के अंदर आया लाकत आफीसा मरिंग वाला कसरिन, के फलों और कसर के अंदर कता नहीं होगा. तो कसर से मुराद ये खजूर की चर्बी है या ये खजूर के छोटे पौधे हैं भाई. और इसी तरह नीस हदीस में आता है ला कताफी तआमी, तआम के अंदर कता नहीं है. अब तआम का लफ्ज़ मैंने आपको बतलाया था जो खाना तैयार किया जाता है खाने के लिए, उसको भी अरबी में तआम कहते हैं. और इसी तरह जो गल्ला है यानी गंदुम जो है इसको भी तआम कहते हैं अरबी जुबान में. अब गंदुम के अंदर तो बिल इजमा जो है चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा. तो साहिब हिदाया फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि ये जो हदीस में आया ला कताफी तआम, इससे गंदुम मुराद नहीं है, क्योंकि गंदुम के अंदर तो बिल इजमा हाथ काटा जाता है. मालूम हुआ इससे वो खाना मुराद है जिसे खाने के लिए तैयार किया जाता है और जो जल्दी खराब हो जाता है. इस हदीस से मालूम हुआ कि जो चीज जल्दी खराब होती है उसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा भाई. और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर दरख्त पर फल लगे हुए हों उनको कोई चोरी कर ले, या खेती के अंदर फसल लगी हुई थी और कोई उसको काट कर ले जाए, तो इस सूरत में हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि यहां हिफाजत मौजूद नहीं है। और हालांकि हाथ उसी चोरी में काटा जाएगा जिसमें चोर माले महफूज को लेकर जाए भाई। और फिर इसी तरह साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि गाने बजाने के जो आलात हैं उनके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि चोरी करने वाला तावील करेगा कि मैं तो इन चीजों को इसलिए लेकर गया था ताकि मैं इनको तोड़ दूं क्योंकि शरीयत ने इनसे मना किया है। और इसी तरह साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि कुरान की चोरी के अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि कुरान के अंदर जो मकसूद होता है वो कागज और गत्ता वगैरह मकसूद नहीं होता, बल्कि वहां वो जो मकतूब है, वो जो नुकूश और हरूफ वगैरह हैं वो मकसूद होते हैं और उनकी तो कोई कीमत नहीं है, वो तो माल नहीं है। तो कुरान के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा तो, और वह नुकूश और हरूफ वगैरह असल हैं, तो जब असल के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा तो कागज और जिल्द वगैरह ये तो उसके ताबिया हैं, तो ताबिया के अंदर बतरीके औला हाथ नहीं काटा जाएगा। हत्ता कि अगर इस कुरान पर किसी ने सोना या चांदी जेवर वगैरह चढ़ा दिया तो उसकी चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि ये चीजें भी कुरान के ताबिया हो गई भाई। और जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कुरान के अंदर हाथ काटा जाएगा। और साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि ये जो दरवाजे जो दीवारों में लगा दिए जाते हैं, जैसे मस्जिद का दरवाजा है या घर का दरवाजा वगैरह, इनकी चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि यहां पर हिफाजत नहीं है भाई। इसी तरह अगर कोई शख्स सोने की सलीब चोरी कर लेता है या शतरंज या नर्द का जो खेल है वो चोरी कर लेता है तो इस सूरत के अंदर भी चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि शरीयत ने इन चीजों से बचने और इनको तोड़ने का हुक्म दिया है, तो चोर तावील करेगा कि मैं इन चीजों को तोड़ना चाहता था। और इसी तरह अगर कोई आजाद बच्चे को चोरी कर ले, आजाद बच्चा जो अभी चल फिर नहीं सकता, जो बातें नहीं कर सकता, इसको अगर चोरी कर ले कोई तो इसमें हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे बच्चे पर जेवर वगैरह ही क्यों ना हो। वजह यह कि आजाद बच्चा जो है वो माल नहीं है, और हाथ काटने के लिए जरूरी है कि जिस चीज को चोरी किया है वो माल होना चाहिए भाई, तो लिहाजा आजाद बच्चे के अंदर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। और इसी तरह बालिग गुलाम जो है उसके अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि बालिग गुलाम को ले जाने को धोखा या गसब तो कहा जाता है, उसको चोरी नहीं कहा जाता। अलबत्ता अगर छोटा गुलाम है जो बोल नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसकी चोरी के अंदर तराफेन फरमाते हैं हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि ये मुतलकन माल है हर एतबार से। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इसमें भी इख्तिलाफ करते हैं, वो फरमाते हैं कि ये बाज एतबार से देखें ये छोटा गुलाम जो है, बाज एतबार से देखें तो ये माल है, और बाज एतबार से देखें तो ये आदमी है और यानी गैर माल है, लिहाजा इसके माल होने में शुबा आ गया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है भाई। और उसके बाद साहिब हिदाय ने बतलाया कि ये जो रजिस्टर और कापियां जिनके अंदर लिखा जाता है इनकी चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा जब इनके अंदर लिखा हुआ हो। वजह यह कि इस सूरत के अंदर जो मकसूद होता है वो इनके अंदर लिखी हुई चीज जो है वो मकसूद होती है, यानी मकतूब मकसूद होता है, और मकतूब तो हम पहले बयान कर चुके कि वो माल नहीं है, वो तो नुकूश और हुरूफ का नाम है, तो जब वो माल नहीं है तो उसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। अलबत्ता हिसाब किताब की जो रजिस्टर हैं जिनके अंदर कोई शख्स अपना हिसाब किताब वगैरह लिखता है उनके अंदर हाथ काटा जाएगा। वजह यह कि वो हिसाब किताब तो हर एक के काम का नहीं है, तो मालूम है वहां पर मकसूद जो है वो मकतूब नहीं है बल्कि कागज और जिल्द वगैरह है, और वो तो माले मुतकविम है तो उनमें हाथ काटा जाएगा। और फिर इसी तरह साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि अगर किसी ने कोई कीमती लकड़ी चोरी की, जैसे सागवान की लकड़ी है या नेजे की लकड़ी है या अबनूस और संदल वगैरह की लकड़ी है, तो इसमें हाथ काटा जाएगा क्योंकि यह कीमती माल शुमार होता है। और इसी तरह अगर किसी ने कीमती पत्थर चुरा लिए तो यह भी कीमती माल शुमार होता है, इसके अंदर भी हाथ काटा जाएगा। और साहिब हिदाय ने आपको बतलाया था कि लकड़ियों के अंदर हाथ नहीं काटा जाता, लेकिन अगर किसी ने लकड़ियों में कारीगरी दिखाई और इन लकड़ियों से बर्तन बना लिए या दरवाजे बना लिए तो इनके अंदर भी हाथ काटा जाएगा, क्योंकि कारीगरी की वजह से अब ये माले मुतकविम बन गया भाई। और नीस खयानत करने वाला मर्द या औरत है, या इसी तरह जो लुटेरा है यानी मुंतहिब है, या इसी तरह मुख्तलिस जो है उचक का, जो चीज अचानक उठाकर गायब हो जाता है, और इसी तरह जो नबाश है, इनके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। इंदल अहनाफ, वजह यह कि यह सारिक नहीं है, वजह यह कि सारिक नहीं है, और सारिक का हाथ काटने का कुरान ने हुक्म दिया है। और ये जो खाइन है या मुख्तलिस है या मुंतहिब है या नबाश है, इनके लिए तो अरबी में बाकायदा अलग लफ्ज मौजूद हैं, अलग नाम मौजूद हैं, मालूम हुआ ये सारिक नहीं है, तो इनके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। जबकि नबाश के सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह इख्तिलाफ फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि कफन चोर जो है उसका हाथ काटा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, मन नबश कतअनाहु, जिसने कफन चोरी किया हम उसका हाथ काटेंगे। और नीज इसलिए भी क्योंकि जो कफन है ये माले महफूज है, वजह यह कि हर चीज के लिए हिर्स जो है उसी के मिसल हुआ करता है। जैसे सोना चांदी है उसके लिए हिर्स संदूक है, घर का सामान है उसके लिए हिर्स जो है वो घर की इमारत है भाई, और इसी तरह जानवर वगैरह हैं तो उनके लिए हिर्स अस्तबल है भाई। तो हर चीज का हिर्स उसी के मुआफिक उसके मुताबिक हुआ करता है। तो ये जो कफन है इसके लिए ये कबर हिर्स है, हिफाजत की जगह है, तो इससे अगर कोई ये कफन चुराएगा तो उसका हाथ काटा जाएगा भाई। जबकि हम कहते हैं नहीं, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं ला कता अलल मुख्तफी, मुख्तफी पर कता नहीं है, और अहले मदीना की जुबान में मुख्तफी कफन चोर को कहते हैं। और नीज इसलिए भी कफन चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि यहां माल की मिल्कियत के अंदर शुबा आ गया, वारिस तो मालिक नहीं है इस कफन का, वारिस तो कफन का मालिक नहीं, क्योंकि कफन दफन तो वारिस को माल देने पर मुकद्दम है, मैयत को उसकी हाजत है कफन दफन की, तो लिहाजा वारिस भी नहीं इस कफन का मालिक, और मैयत भी मालिक नहीं है क्योंकि मैयत वो तो मुर्दा है भाई, उसमें तो मालिक बनने की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा इस कफन की मिल्कियत के अंदर भी शुबा आ गया, लिहाजा इसकी वजह से हाथ नहीं काटा जा सकता। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि अगर कोई शख्स बैतुल माल से चोरी कर ले तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि बैतुल माल के अंदर जो माल है उसके अंदर तमाम ममलिकत के लोगों का हक है, और ये चोर भी ममलिकत के लोगों में से एक आदमी है, तो लिहाजा इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। ये इसी तरह अगर चोर ने ऐसा माल चोरी कर लिया कि चोर की उसके अंदर शिरकत थी, चोर का उसके अंदर हिस्सा था, तो इस सूरत में भी चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है उसके किसी के जिम्मे दिरहम है, वो मकरूज अदायगी नहीं कर रहा, तो साहिब हक जो है मकरूज से दिरहम चोरी कर ले तो इस सूरत में इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे दिरहम की मकदार इसके कर्ज से ज्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि कर्ज के बकदर तो इसकी शिरकत आ गई, साहिब हक की उसके अंदर शिरकत आ गई। और अगर एक आदमी के दूसरे पर दिरहम है और वो उसका सामान चोरी कर लेता है तो क्या फिर हाथ काटा जाएगा या नहीं, तो जाहिर रिवायत के मुताबिक इसका भी हाथ काटा जाएगा, क्योंकि इस आदमी का हक दिरहम है, सामान के अंदर इसका कोई हक नहीं है, तो इसने गैर हक को चोरी किया है, लिहाजा इसका हाथ काटा जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इसका हाथ भी नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि बास की बार फुकहा फरमाते हैं कि साहिब हक को इजाजत है कि वो मकरूज जब वो अदायगी नहीं कर रहा तो ये मकरूज का कोई भी सामान उठा ले ताकि उसके जरिए अपने हक को वसूल कर सके। लेकिन साहिब हिदाया ने जाहिर रिवायत को तरजीह दी और बतलाया कि ये जो फुकहा फरमाते हैं कि कोई और सामान भी साहिब हक ले सकता है, इसकी बुनियाद किसी दलील पर नहीं है, लिहाजा इस फुकहा के इस कौल का कोई एतबार नहीं है जब तक इसके साथ चोर का दावा न मिल जाए। मैंने आपको बतलाया था कि अगर चोर दावा कर दे कि ये जो माल मैंने चोरी किया था ये तो मेरा अपना माल है, तो इस सूरत में फौरन हद साकित हो जाएगी, चाहे चोर के पास कोई दलील वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी शुबा तो आ गया कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो लिहाजा ये जो फुकहा फरमाते हैं कि एक का हक तो दिरहम है और उसने दूसरे का सामान चोरी कर लिया है, इनके कौल का कोई एतबार नहीं है इल्ला ये कि चोर का दावा भी साथ मिल जाए। चोर जिसने ये सामान चोरी किया है वो कह दे कि ये तो मेरा अपना ही माल है, ये तो मेरा अपना ही माल है, तो फिर इस सूरत के अंदर शुबा आने की वजह से हद साकित हो जाएगी भाई। उसके बाद आखिर में साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक चोरी के अंदर एक शख्स का हाथ काट दिया गया और फिर उसने वो चीज मालिक को वापस कर दी और फिर वही बेआईन ही उसी चीज को दोबारा चोरी कर लिया, तो इस सूरत के अंदर इस चोर का हाथ दोबारा नहीं काटा जाएगा। इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफई रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, उसी चीज को दोबारा चोरी किया है फिर भी हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि यह दूसरी चोरी भी पहली चोरी की तरह कामिल दर्जे की चोरी है, बल्कि यह दूसरी चोरी तो पहली चोरी से भी बढ़कर बुरी है कि एक दफा इस आदमी को सजा मिल चुकी है, इसका हाथ काटा जा चुका है और यह फिर दोबारा उसी चीज को चोरी कर रहा है, लिहाजा इसके अंदर बतरीके औला उसके हाथ को काटा जाएगा। लेकिन हमारे नजदीक जब चोर का एक दफा चोरी की वजह से हाथ काट दिया गया तो उस माल की इस्मत साकित हो गई, उस माल की इस्मत साकित हो गई, यानी अब वो माल महफूज ना रहा। इस्मत का माना है हिफाजत, हिफाजत। मैंने आपको बतलाया था कि साहिब हिदाया आगे चलकर जाब्ता जिक्र फरमाएंगे कि जब एक चोरी के अंदर चोर का हाथ काट दिया जाए तो अगर उसके पास वो माल मौजूद है जो उसने चोरी किया था फिर तो वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस माल का मालिक वही शख्स है अभी भी भाई, तो ये माल वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर चोर के पास वो माल हलाक हो चुका है या चोर ने खुद उस माल को हलाक किया या खर्च कर दिया है तो फिर चोर पर जमान नहीं आएगा। हाथ का काटना ये उसके सारे जुर्म की सजा बन गई, जो उसने चोरी की वो जुर्म भी और जो उसने माल जाया किया वो भी, तो दोनों की सजा ये हाथ काटना है। मालूम हुआ जब चोर का हाथ काट दिया जाए तो उस माल की इस्मत साकित हो जाती है, अब वो माल महफूज ना रहा भाई। अगर वो चोर के पास हलाक भी हो तो चोर पर उसका जमान नहीं आता। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा यहां पर देखा जाए इस शख्स ने दोबारा वही चीज चुराई है तो मालिक भी वही है, चीज भी वही है, और इसी चीज के अंदर इसका एक दफा हाथ भी काटा जा चुका है, तो इसकी वजह से शुबा पैदा हो जाता है और शुबे की वजह से हद साकित हो जाएगी। शुबा पैदा हो जाता है कि इस चोर के हक में अब यह माल महफूज नहीं है भाई, अगरचे माल महफूज बन चुका है, दोबारा मालिक की हिफाजत में आ चुका है, लेकिन फिर भी चीज तो वही है, मालिक तो वही है, और नीज इसी चीज की चोरी में एक दफा हाथ भी कट चुका है, तो इस माल की इस्मत के साकित होने का कम से कम शुबा रह जाता है और शुबे की वजह से भी हद साकित हो जाती है भाई। और अलबत्ता अगर उस चीज की हालत बदल गई, मसलन पहली मर्तबा जब चोरी किया था तो वो धागा था और दूसरी मर्तबा जब चोरी किया है तो मालिक ने उसको बुन कर उससे कपड़ा बना लिया है, तो अब इस सूरत के अंदर अब वो चीज एक न रही, उसकी जींस बदल गई, और नीस ये जो कपड़ा है इसके अंदर तो हाथ नहीं कटा, वो तो पहली चीज जो धागा था उसके अंदर हाथ कटा था, तो लिहाजा जब चीज की जिंस बदल गई तो अब महल के यानी उस माल के एक होने या उसके अंदर हाथ के कटने की वजह से अब कोई शुबा पैदा नहीं होगा और दोबारा कता होगा, यानी अब इस चोर का बायां पांव काटा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फिल हिर्ज वल अख्ज मिनहु ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع। अच्छा भाई, فصل في الحرز والأخذ منه। حرز حرز का माना हिफाजत के भी है और حرز के माने महफूज जगह के भी है। حرز का माना हिफाजत भी और हिफाजत की जगह भी, यानी वो जगह जिसको दूसरी चीजों की हिफाजत के लिए तैयार किया गया हो उसको हिर्स कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि चोरी के अंदर हाथ तभी काटा जाएगा जब चोर माले महफूज को लेकर जाए, और माले महफूज तभी होगा जब वो हिर्स के अंदर हो, किसी महफूज जगह के अंदर हो और वहां से चोर उठाकर ले जाए। अगर माल महफूज नहीं है तो उसके अंदर हाथ भी नहीं काटा जाता। और माल महफूज किसे कहेंगे? जहां पर हिर्ज मौजूद हो, हिफाजत मौजूद हो, जब हिफाजत मौजूद है उसके बाद कोई शख्स एक माल उठाकर ले गया तो इस सूरत में उसका हाथ काटा जाएगा भाई। तो यहां इस फसल में उसकी तफसील बयान होगी भाई। तो हिर्ज का माना हिफाजत भी और हिर्ज का माना महफूज जगह भी। तो कहते हैं फसल फिल हिर्ज वल अख्ज़ मिन्हू, ये फसल है हिर्ज के बयान में और हिर्ज से उठाने के बयान में कि किस सूरत में चोर का हाथ काटा जाएगा, जब वो हिर से सामान उठा ले भाई। वमन सरका मिन अबवैही औ वलदिही, वमन सरका मिन अबवैही औ वलदिही, और जिस शख्स ने चोरी की मिन अबवैही अपने वालिदैन से, औ वलदिही या अपनी औलाद से, औजी रहमी महरमी मिनहू या अपने करीबी महरम रिश्तेदार से, लम युक्ता, तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। कोई शख्स अपने वालिदैन से कोई चीज चोरी कर ले, या वालिदैन जो है अपनी औलाद से कोई चीज चोरी कर ले, या कोई करीबी महरम रिश्तेदार जो है वो किसी से कोई चीज चोरी कर ले, तो इन तमाम सूरतों के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। वजह ये कि अभी मैंने आपको बतलाया कि चोर का हाथ तब काटा जाएगा जब वो माले महफूज चोरी कर ले, और ये औलाद और वालिदैन ये तो एक दूसरे के पास आते जाते हैं, इसी तरह करीबी महरम रिश्तेदार भी घर के अंदर आता जाता है, तो इनके हक में हिर्ज ना रहा भाई। घर के अंदर आप चीजें रखते हैं चीजों की हिफाजत के लिए, कोई उठाकर ना ले जाए, तो ये जो घर की इमारत है, ये जो घर की चारदीवारी है, ये हिर्ज है। ये क्या है? हिर्ज है, हिफाजत की जगह है, लेकिन वालिदैन और औलाद एक दूसरे के पास आते जाते हैं, करीबी महरम रिश्तेदार भी एक दूसरे के पास आते जाते हैं, तो इनके हक में ये हिर्ज ना रहा। जब इनके हक में हिर्ज ना रहा तो चोरी में इनका हाथ भी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये माल महफूज नहीं था जिसको ये लेकर गए भाई। तो कहते हैं वमन सरका मिन अबवैही औ वलदिही, और जिस शख्स ने चोरी की अपने वालिदैन से, औ वलदिही या अपनी औलाद से, औ ज़ी रहमी महरमी मिन्हू या अपने करीबी महरम रिश्तेदार से, लम युक्ता, तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। याद रखना इस फसल के अंदर जो मसाइल जिक्र होंगे, उलमा ने उसके बाकायदा ज़ाबते जिक्र फरमाए हैं बैन सुतूर भाई। मेरी किताब में ये जो हमने मसला शुरू किया वमन सरका मिन अबवैही औ वलदिही, यहां पर बैन सुतूर ज़ाबता दिया हुआ है। अल असल अव्वल ला कताला मन युबसतु लहू फि दुखूल वल खुरूजी, पहला ज़ाबता यह है कि जो शख्स बेतकल्लुफी से किसी के पास आता जाता हो उस पर कता नहीं है, चोरी के अंदर उसका हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि जब वो बेतकल्लुफी से आता है तो यहां पर हिफाजत न रही, हिर्ज न रहा, और जब हिर्ज नहीं तो हाथ भी नहीं काटा जा सकता। तो पहला ज़ाबता क्या कि चोरी के अंदर चोर का हाथ तब काटा जाएगा जब हिर्ज कामिल हो भाई, और अगर बेतकल्लुफी से आना जाना हो तो हिर्ज नहीं, जब हिर्ज नहीं तो हाथ भी नहीं काटा जाएगा। ये माना है। फिर देख लीजिए, कहते हैं वमन सारा कमीन अबवैही औ वलदिही, और जिसने चोरी की अपने वालिदैन से या अपनी औलाद से, औ ज़ी रहमी महरमी मिन हुई अपने करीबी महरम रिश्तेदार से, लम युक्ता, तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। फल अव्वलु, तो अव्वल जो है भाई, देखिए यहां दो किस्म के रिश्तेदार जिक्र हुए, वालिदैन और औलाद, और उसके साथ साथ करीबी महरम रिश्तेदार। तो ये जो वालिदैन और औलाद हैं इनके अंदर तो वलादत वाला रिश्ता है जी, इनमें वलादत वाला और पैदाइश वाला रिश्ता है, जबकि करीबी महरम रिश्तेदार है मसलन भाई है या बहन है या मामू है या चचा है, इनके साथ तो पैदाइश वाला रिश्ता नहीं। तो दो किस्म के रिश्तेदार यहां बयान हो गए मतन में, कुछ वो रिश्तेदार जिनके साथ पैदाइश वाला रिश्ता है जैसे वालिदैन और औलाद, और कुछ वो रिश्तेदार जो करीबी महरम रिश्तेदार तो हैं लेकिन उनमें पैदाइश वाला रिश्ता नहीं है। तो साहिब हिदायत फरमाते हैं फल अव्वल, तो अव्वल जो है यानी पहली किस्म के जो रिश्तेदार हैं, और पहली किस्म के कौन से रिश्तेदार मतन में जिक्र हुए, जिनमें पैदाइश वाला रिश्ता है। तो कहते हैं फल अव्वल, तो अव्वल किस्म जो है वह हुवल विलाद, और वो विलाद है यानी पैदाइश वाला रिश्ता है जिनके साथ, उनमें हाथ नहीं काटा जाएगा। क्यों? लिल बुसूतति फिल माली, बुसूतत का माना है कुशादगी यानी बेतकल्लुफी, मुराद क्या है बेतकल्लुफी। तो कहते हैं पहली किस्म जो है वह हुवल विलाद, और वो जिनके साथ वलादत वाली रिश्तेदारी है तो इनका हाथ नहीं काटा जाएगा। लिल बुसूतति फिल माली, माल के अंदर बेतकल्लुफी की वजह से, कि इनके अंदर माल में बेतकल्लुफी होती है, औलाद जो है वो वालिदैन का माल इस्तेमाल करते हैं और वालिदैन औलाद का माल इस्तेमाल करते हैं, तो माल के अंदर बेतकल्लुफी होती है। वफी दुखूल फिल हिर्ज़ी, और नीज हिर्ज के अंदर दाखिल होने में, औलाद जो है वालिदैन के हिर्ज में दाखिल होते हैं, उनके घर आते जाते हैं और वालिदैन औलाद के घर आते जाते हैं। तो मालूम हुआ वो रिश्तेदार जिनके साथ पैदाइश वाला रिश्ता है वहां चोरी के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, दो वजह से। एक वजह क्या कि माल के अंदर बेतकल्लुफी होती है, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी वजह यह कि वहां पर एक दूसरे के हिर्ज में दाखिल होते हैं, बगैर इजाजत के आते जाते हैं भाई। तो यह माना है लिल बुसूतति फिल माली, माल के अंदर बेतकल्लुफी की वजह से, वफिद दुखूल फिल हिर्ज, और हिर्ज के अंदर दाखिल होने में, यानी बगैर इजाजत के एक दूसरे के हिर्ज में दाखिल होते हैं। वसानी लिल माना सानी, और जो दूसरा है वो माना सानी की वजह से है भाई। दूसरा कौन सा रिश्तेदार जिक्र हुआ मतन में? जी रहम महरम भाई, करीबी महरम रिश्तेदार। इसके साथ पैदाइश वाला रिश्ता तो नहीं, लेकिन ये करीबी महरम रिश्तेदार है। इसके साथ माल के अंदर तो बेतकल्लुफी नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के हिर्ज में आने जाने में बेतकल्लुफी होती है। यह माना है वसानी, और जो दूसरी किस्म के रिश्तेदार है यानी करीबी महरम रिश्तेदार, लिल माना सानी, उसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, लिल माना सानी, दूसरे सबब की वजह से कि हिर्ज के अंदर बेतकल्लुफी से दाखिल होते हैं भाई। वलिहादा, और इसी वजह से अबाहा शरउ नजरा इला मवाज़िउ ज़ीनति ज़ाहिरति मिन्हा, और इसी वजह से भाई जो करीबी महरम रिश्तेदार हैं, चूंकि बेतकल्लुफी से एक दूसरे के घर आते जाते हैं, इसीलिए शरीयत ने मुबाह करार दिया है जीनत की जाहिरी जगहों की तरफ देखने को इन करीबी महरम रिश्तेदारों के लिए। औरत की जाहिरी जीनत की जगहों की तरफ देखने को शरीयत ने जायज करार दिया है। देखो करीबी महरम रिश्तेदार आते हैं आपके पास, मसलन आपके भाई आते हैं, आपकी बहन आती है, और इसी तरह आपके चचा आते हैं, आपके मामू वगैरह आते हैं, इनके लिए उस करीबी महरम औरत की जाहिरी जीनत की जगहों की तरफ देखना जायज है, यानी चेहरे की तरफ देखना, बालों की तरफ देखना, बाजुओं की तरफ देखना, पिंडलियों और पांव की तरफ देखना वगैरह, ये जो जाहिरी जीनत की जगह है इनके लिए इनकी तरफ देखना जायज है, इसी वजह से कि ये बेतकल्लुफी से एक दूसरे के पास आते जाते हैं। तो लिहाजा शरीयत ने भी जाहिरी जीनत की जगहों की तरफ देखने को मुबाह करार दे दिया। अगर शरीयत इसमें भी पाबंदी लगा देती तो लोग तो हरज और मुश्किल में पड़ जाते भाई। तो कहते हैं वलिहादा, और इसी वजह से यानी बेतकल्लुफी से एक दूसरे के पास आने जाने की वजह से, अबाहा शरउ, शरीयत ने मुबाह कर दिया, अन नजारा, देखने को, इला मवाज़िउ ज़ीनति ज़ाहिरति मिन्हा, इनकी जो जाहिरी जीनत की जगहें हैं उनको। आगे देखिए बिखिलाफ सदीकैनी, बखिलाफ दो दोस्तों के। ये दरअसल एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदायत। एतराज ये होता है कि जिस तरह करीबी महरम रिश्तेदार जो हैं उनमें एक दूसरे के पास आने जाने में बेतकल्लुफी होती है, एक दूसरे के हिर्ज में दाखिल होते हैं, तो बाज औकात दोस्तों के अंदर भी बेतकल्लुफी होती है, वो भी एक दूसरे के हिर्ज में बगैर इजाजत के आते जाते हैं। लेकिन बिल इत्तेफाक तमाम उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई दोस्त चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाएगा, हालांकि दोस्त को भी तो हिर्ज के अंदर आने की इजाजत थी। जब हिर्ज के अंदर आने की इजाजत थी तो उसके हक में हिर्ज बाकी न रहा भाई। एतराज समझ में आया? तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि दो दोस्तों में से जब एक ने दूसरे से चोरी करने का इरादा कर लिया तो अब वो दोस्त रहा ही नहीं, वो दुश्मन बन गया। अब जब वो हिर्ज के अंदर आया है तो वो बतौरे दुश्मन के आया है, बतौरे दोस्त के नहीं आया भाई, लिहाजा इसलिए इसका हाथ काटा जाएगा। कहते हैं बिखिलाफ सदीकैनी, बखिलाफ दो दोस्तों के, लिअन्नहु आदाहु बिस्सरिकति, इसलिए क्योंकि दो दोस्तों में से एक जो है आदाहु, उसने दुश्मनी की है बेसरिकति, चोरी की वजह से, यानी जब उसने चोरी का इरादा कर लिया तो गोया वो दोस्त रहा ही नहीं बल्कि दुश्मन बन गया। वफिसानी खिलाफ शाफिई रहिमहुल्ला, और दूसरे के अंदर इमाम शाफी रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है भाई। हमने तो कहा कि चाहे पैदाइश वाला रिश्ता हो चाहे करीबी महरम रिश्तेदार हो, दोनों सूरतों के अंदर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ये करीबी महरम रिश्तेदार के मामले में इख्तिलाफ फरमाते हैं, वो इस करीबी महरम रिश्तेदार को दूर वाले रिश्तेदारों के साथ मिलाते हैं, और दूर वाले रिश्तेदारों के अंदर तो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक हाथ काटा जाएगा अगर वो चोरी कर ले। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि असल कराबत तो पैदाइश वाली ही कराबत है भाई, और बाकी कराबतें इनके वास्ते से हैं। मसलन देखो, भाई है, भाई आपका करीबी महरम रिश्तेदार तो है, लेकिन उसके साथ आपका पैदाइश वाला रिश्ता नहीं है। पैदाइश का रिश्ता या तो बाप दादा के साथ है, या नीचे अपनी औलाद के साथ है, भाइयों के साथ पैदाइश वाला रिश्ता नहीं। भाइयों के साथ जो रिश्ता है वो बाप के वास्ते से है जी। किसके वास्ते से है? बाप के वास्ते से। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि और जो करीबी महरम रिश्तेदार हैं इनके साथ जो रिश्ता है वो किसी के वास्ते से होता है, लिहाजा ये दूर वाले रिश्तेदारों की तरह हुए, और दूर वाले रिश्तेदारों में तो हाथ काटा जाता है चोरी के अंदर, तो इनका भी हाथ काटा जाएगा भाई। तो कहते हैं वफिसानी खिलाफ शाफिई रहमहुल्लाह, और दूसरों के अंदर यानी करीबी महरम रिश्तेदार की चोरी के अंदर इमाम शाफी रहमहुल्लाह का इख्तिलाफ है। लिअन्नहु अल्हक़हा बिलकराबतिल बईदती, इसलिए क्योंकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इनको मिलाया है बिलकराबतिल बईदती, दूर की रिश्तेदारी के साथ कि दूर के रिश्तेदारों के दर्जे में है। वक़द बय्यन्नाहु फिल आताक, और तहकीक इस इख्तिलाफ को हमने बयान किया था आता में किताबुल आताक के अंदर, जहां यह बहस आई थी कि मन मलका जा रहमी महरम मिनहु अतका अलैही, हदीस में आता है कि जो शख्स अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना तो वह आजाद हो जाएगा। तो वहीं पर साहिब हिदाया ने इख्तिलाफ जिक्र किया था कि हमारे नजदीक चाहे पैदाइश वाला रिश्ता हो चाहे करीबी महरम रिश्तेदार हो, जब इंसान उसका मालिक बनेगा तो वो आजाद हो जाएगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, अगर पैदाइश वाला रिश्ता है फिर तो वो शख्स आजाद होगा, वरना अगर पैदाइश वाला रिश्ता नहीं सिर्फ करीबी महरम रिश्तेदार है तो उसको खरीदा जाए तो वो आजाद नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वक़द बय्यन्नाहु फिल आताक, और तहकीक हमने इसको किताबुल आताक में बयान किया था। आगे देखिए भाई, वलौ सरका मिन बैति ज़ी रहमिन महरमिन मता गैरिही यंबगी अल्ला युक्ता, वलौ सरका मालहु मिन बैति गैरिही युक्ता इतबारन लिलहिर्ज व अदमिही। भाई सूरत मसला यह, एक आदमी ने अपने करीबी महरम रिश्तेदार के घर से चोरी की, लेकिन जो माल इसने चोरी किया वो इसके करीबी महरम रिश्तेदार का नहीं था, बल्कि वो किसी अजनबी आदमी का माल था जी, जो इसने इसके पास बतौर अमानत रखवाया था। तो क्या हाथ काटा जाएगा या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि भाई यहां सारा दारोमदार हिर्ज पर है, अपने करीबी महरम रिश्तेदार के घर से चोरी की है तो वहां हिर्ज नहीं है, चाहे माल उसका हो चाहे किसी और का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल आपने किसको देखना है? हिर्ज को। तो जब करीबी महरम रिश्तेदार के घर से चोरी किया तो हिर्ज नहीं, चाहे उसी का माल हो चाहे किसी और का माल हो, किसी सूरत में भी चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। लेकिन इसका बरक्स कर लें, एक आदमी ने एक अजनबी के घर से चोरी की, अब अजनबी के घर तो हिर्ज मौजूद है, इस आदमी को तो उस घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, तो अब चाहे उस अजनबी के घर से इसने अपने करीबी महरम रिश्तेदार का माल ही क्यों ना चुरा लिया हो, फिर भी इसका हाथ काटा जाएगा जी। चोर ने एक अजनबी के घर से अपने करीबी महरम रिश्तेदार का माल चोरी कर लिया, तो यहां पर घर किसका है? अजनबी का है, तो हिर्ज मौजूद है, और हिर्ज से जब माल महफूज को चोरी किया जाए तो हाथ काटा जाता है, लिहाजा यहां हाथ काटा जाएगा। बात समझ में आ गए? तो लिहाजा माल को नहीं देखेंगे कि माल इसके करीबी महरम रिश्तेदार का है या नहीं, बल्कि सिर्फ यह देखा जाएगा कि इसने हिर्ज को तोड़ा है या हिर्ज को नहीं तोड़ा। अगर हिर्ज को तोड़ा है तो फिर हाथ काटा जाएगा, और अगर हिर्ज को नहीं तोड़ा तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वलौ सरका मिन बैति ज़ी रहमिन महरमिन मता गैरिही, और अगर किसी शख्स ने चोरी किया अपने करीबी महरम रिश्तेदार के घर से मता गैरिही, किसी दूसरे के सामान को, चोरी कहां से किया है? अपने करीबी महरम रिश्तेदार के घर से और उसके कमरे से किसी दूसरे के सामान को चोरी किया है, यम बगी अल्लाह युक्ता, तो मुनासिब यह है कि इसका हाथ ना काटा जाए भाई, क्योंकि यहां पर हिर्स मौजूद नहीं, ये बेतकल्लुफी से वहां आता जाता था भाई। वलाउ सरका मालहू मिन बैति गैरिही, और अगर अपने करीबी महरम रिश्तेदार का माल चोरी कर लिया, किसका माल चोरी किया, करीबी महरम रिश्तेदार का माल चोरी किया, मिन बैति गैरिही, लेकिन किसी दूसरे के घर से, तो कहते हैं युक्ताऊ, यहां पर हाथ काटा जाएगा भाई, तो कहते हैं युक्तौ, हाथ काटा जाएगा, एतबारन लिल हिर्ज व आदमी ही, हिर्ज के होने और ना होने का एतबार करते हुए, हिर्ज है तो हाथ काटा जाएगा, हिर्ज नहीं तो हाथ नहीं काटा जाएगा। तो यहां तक जाब्ता समझ में आ गया, जाब्ता क्या हुआ कि हिर्ज से चोरी की जाएगी तो हाथ कटेगा, और अगर एक आदमी को एक जगह के अंदर आने जाने की इजाजत है तो उसके हक में वो हिर्स नहीं, जब हिर्स नहीं तो वहां से चोरी करने में उसका हाथ भी नहीं काटा जाएगा। आगे देखिए, वह इन सारा का मीन उम्मी ही मीन रजाती कुतिया, भाई सूरत है मसला ये, एक शख्स जो है उसने अपनी रजाई मां से चोरी कर ली तो क्या इसका हाथ काटा जाएगा या नहीं, तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इसका हाथ काटा जाएगा। वजह यह कि रिजाई मां के पास आने जाने में बेतकल्लुफी नहीं होती, लिहाजा वहां हिर्ज मौजूद है, वहां हिर्ज मौजूद है, आदमी बेतकल्लुफी से घर के अंदर नहीं जा सकता, और जब हिर्ज मौजूद है तो हिर्ज से चोरी करने की सूरत में हाथ काटा जाता है, लिहाजा इस आदमी का भी हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वह इन सारा का मीन उम्मी ही मीना रजा आती, और अगर चोर ने अपनी रजाई मां से चोरी कर ली, कुतिया, तो उसका हाथ काटा जाएगा। वान अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला अन्नहु ला युक्ताऊ, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, ले अन्नहु यदखुलु अलैहा मिन गैर इस्तेजान व हिशमतिन, इस्तेजान का माना है इजाजत, हिशमत कहते हैं शर्म को और हया को, हिशमत का क्या माना, शर्म और हया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, लिया नहु यदखुलु अलैहा, इसलिए क्योंकि ये चोर अपनी रिजाई मां पर दाखिल होता है, मिन गैर इस्तेजान व हिशमतिन, बगैर किसी इजाजत के और बगैर किसी शर्म और हया के, यानी बिला झजक उसके पास आता जाता है भाई। तो जब बिला झजक उसके पास आता जाता है तो हिर्स नहीं है, जब हेर्स नहीं है तो इस सूरत में चोरी के अंदर हाथ भी नहीं काटा जाएगा। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्नहु यदखुलु अलैहा मिन गैर इस्तेजान व हिशमतिन, इसलिए क्योंकि ये शख्स अपनी रिजाई मां पर दाखिल होता है बगैर इजाजत के और बगैर शर्म के, बिखिलाफिल उख्ति मिनर रजाअती, भाई याद रखो रिजाई बहन से अगर कोई शख्स चोरी कर लेता है तो फिर बिल इत्तेफाक उसका हाथ काटा जाएगा, रिजाई बहन से चोरी कर लेता है तो बिल इत्तेफाक उसका हाथ काटा जाएगा भाई। अलबत्ता रिजाई मां के अंदर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इख्तिलाफ फरमाते हैं, जैसे अभी मसला गुजरा कि रिजाई मां से चोरी कर ली किसी ने तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, और उसकी वजह भी जिक्र कर दी क्योंकि रिजाई मां के पास आदमी बिला झजक आता जाता है तो वहां हिर्ज नहीं है, जबकि रिजाई बहन के पास आदमी बेतकल्लुफी से नहीं आता, जब वहां बेतकल्लुफी से नहीं आता तो वहां हिर्स मौजूद है, जब हिर्स मौजूद है तो चोरी की सूरत में हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं बिखिलाफ अल उख्त मिन अर रजाअती, बखिलाफ रजाई बहन के, लिन इदामी हाजल माना फीहा आदतन, लिन इदामी हाजल माना, इस इल्लत के, इस सबब के मादूम होने की वजह से, फीहा उस रजाई बहन में, आदतन आदत के एतबार से, यानी रजाई बहन के अंदर यह वाला माना मादूम है, उसके पास कोई बगैर इजाजत के और बेतकल्लुफी से आता जाता नहीं है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ अल उख्त मिन अर रजाअती, बखिलाफ रजाई बहन के, लिन इदामी हादल माना फीहा आदतन, इसलिए क्योंकि आदतन ये वाला सबब जो है उस रजाई बहन के अंदर नहीं है। वजहु जाहिरी, अब जाहिरी रिवायत की वजह बयान कर रहे हैं, ऊपर मतन में जाहिरी रिवायत के मुताबिक आपको बतलाया था कि अगर कोई अपनी रजाई मां से चोरी कर लेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, अब उसकी वजह बयान करने लगे हैं। कहते हैं वजह जाहिरी, जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अन्नहु ला कराबता, कि इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, रिजाई मां के साथ रिजात का तो रिश्ता है लेकिन कोई और रिश्तेदारी नहीं है। तो कहते हैं जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अन्नहु ला कराबता, के कोई कराबत यानी कोई रिश्तेदारी नहीं है यहां पर, वल महरमी यतु बिदूनिहा ला तुहतरमु, और महरम होना बगैर रिश्तेदारी के, ला तुहतरमु, इसका एहतराम नहीं किया जाता भाई, करीबी रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो उसका तो एहतराम किया जाता है, लेकिन सिर्फ रिजात वाला रिश्ता हो, महरमियत हो, लेकिन करीबी रिश्ता न हो, तो फिर उसका कोई एहतराम नहीं किया जाता। तो यह माना है वल महरमियत बिदू निहा ला तुख्तरमू, और महरम होना बगैर रिश्तेदारी के इसका एहतराम नहीं किया जाता। कमा इदा सबतत बिज़िना व तकबील अन शहवतिन, जैसे कि वो हुरमत जो साबित होती है जिना की वजह से, व तकबील अन शहवतिन, और शहवत से बोसा देने से। भाई देखिए, आप पढ़ चुके हैं हुरमत मुसाहरत का मसला, कि कोई शख्स अगर किसी औरत से जिना भी कर ले तो जानी और मजनिया के उसूल और फुरू एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। तो अब देखो, जिना की वजह से भी हुरमत आ रही है, महरमियत आ रही है, महरमियत आ रही है जानी के लिए, मजनिया के उसूल और फुरू से निकाह हमेशा के लिए हराम हो गया, और मजनिया के लिए जानी के उसूल और फुरू से निकाह हमेशा के लिए हराम हो गया। तो देखो, जिना की वजह से, या इसी तरह दवाई जिना है यानी शहवत से बोसा देना, इसकी वजह से भी हुरमत मुसाहरत आ जाती है, महरमियत आ गई, लेकिन इसका कोई एहतराम नहीं करता, इस महरमियत का कोई एहतराम नहीं करता। तो कहते हैं कमा इजा सबतत बिज़िना व तकबील अन शहवतिन, जैसे कि वो महरमियत जो जिना की वजह से और शहवत से बोसा लेने की वजह से साबित होती है, यानी जैसे उसका एहतराम नहीं होता। व अक़रबु मिन ज़ालिका लुख्तु मिन अर्रज़ाअति, और इससे ज्यादा करीब तो रिजाई बहन है। जी। भाई बात चल रही है रिजाई मां की, और रिजाई मां के अंदर रिश्ता तो नहीं, अलबत्ता महरमियत है। साहिब हिदायत फरमा रहे हैं सिर्फ महरमियत हो और रिश्ता ना हो तो इसका ज्यादा एहतराम नहीं किया जाता। जैसे कि जिना की वजह से जब हुरमत मुसाहरत आ जाती है तो वहां पर भी महरमियत तो आ जाती है, लेकिन उसका एहतराम नहीं किया जाता। बल्कि इस रिजाई मां के ज्यादा करीब जो है हुरमत मुसाहरत के मुकाबले में रिजाई बहन ज्यादा करीब है। रिजाई मां में भी क्या आ गई? महरमियत। जिना में भी क्या आती है? महरमियत। और रिजाई बहन में भी क्या है? महरमियत। तो रिजाई मां जो है इसके अंदर महरमियत तो है लेकिन रिश्तेदारी नहीं है, और रिश्तेदारी ना हो, सिर्फ महरमियत हो, तो उसका एहतराम नहीं किया जा सकता जैसे कि जिना के अंदर होता है। बल्कि इस रिजाई मां के ज्यादा करीब तो रिजाई बहन है, क्योंकि रिजाई मां के साथ जैसे रिजाई रिश्ता है, रिजाई बहन के साथ भी रिजाई रिश्ता है, और रिजाई बहन के अंदर तो बिल इत्तेफाक कोई चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाता है, तो रिजाई मां के अंदर भी कोई चोरी कर ले तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, क्योंकि वहां पर बेतकल्लुफी नहीं होती, एक दूसरे के पास बगैर इजाजत के आना जाना नहीं होता। भाई तो कहते हैं वह अक़रबु मिन ज़ालिका लुख्तु मिन अर्रज़ाअति, और जिना से साबित होने वाली महरमियत के मुकाबले में रिजाई बहन ज्यादा करीब है रिजाई मां के। तो और जब रिजाई बहन के अंदर तो हाथ काटा जाता है, तो रिजाई मां के अंदर भी चोर का हाथ काटा जाएगा। वहाजा, और ये इस वजह से, लिअन्न रजा अकल लमा यश्तहिरु, इसलिए क्योंकि रजाअत बहुत कम मशहूर होती है, रिजाअत का आम लोगों को पता नहीं होता। तो चंद एक लोगों को तो रिजात का पता होगा, लेकिन आम लोगों को तो रिजात का पता नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी रिजाई मां या रिजाई बहन के पास बेतकल्लुफी के साथ आएगा जाएगा, तो लोग तो उसके बारे में बदगुमानी करेंगे कि इस औरत के साथ तो इस आदमी का कोई नसबी रिश्ता नहीं है, फिर ये किस तरह इसके पास बेतकल्लुफी से आता जाता है। तो कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से, लिअन्न रजा अकल लमा यश्तहिरु, इसलिए क्योंकि रजात बहुत कम मशहूर होती है, फला बुसूतता, तो वहां पर बेतकल्लुफी नहीं होती। जहां रिजाई रिश्ता होता है, चाहे रिजाई मां है चाहे रिजाई बहन है, वहां बेतकल्लुफी नहीं होती, ज्यादा बेतकल्लुफी से एक दूसरे के पास आते जाते नहीं है। वजह यह है कि अगर बेतकल्लुफी से एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे तो इसके अंदर तो तमाम लोगों को तो रिजाई रिश्ते का पता नहीं होगा, तो लिहाजा लोग जो हैं बदगुमानी करेंगे। भाई लोग क्या करेंगे? बदगुमानी करेंगे। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि रजायत बहुत कम मशहूर होती है, फला बुसूतता, तो लिहाजा इसके अंदर बेतकल्लुफी नहीं होती। तहर्रुजन अन मौकिफी तोहमती, तोहमत के मकाम से बचने के लिए, यहां बेतकल्लुफी नहीं होती तोहमत के मकाम से बचने के लिए, क्योंकि अगर बेतकल्लुफी से आएंगे जाएंगे तो सब लोगों को तो रजायत का नहीं पता, तो लोग तो बदगुमानी करेंगे भाई, बात समझ में आ गए। तो ये माना है फला बसूता था, तो यहां बेतकल्लुफी नहीं होती। तहरुजन अन मौकिफी तोहमती, तोहमत के मकाम से बचने के लिए। बिखिलाफ इन नसबी, बखिलाफ नसब के नसबी रिश्ता जो होता है वो सबको पता होता है, वहां बेतकल्लुफी से आने जाने में किसी किस्म की तोहमत का अंदेशा नहीं होता भाई। आगे देखिए, वह ईदा सारा का अहद उजैनी मिनल आखरी अविल अब्दु मिन सईदी ही औमिनी मरा अति सईदी ही औमिन जौजी सईदती ही लम युक्ता। सूरत है मसला ये भाई, खावंद ने बीवी की कोई चीज चोरी कर ली या बीवी ने खावंद की कोई चीज चोरी कर ली, तो याद रखो इस सूरत के अंदर किसी का भी हाथ नहीं काटा जाएगा। वजह यह है कि खावंद और बीवी के दरमियान बेतकल्लुफी होती है भाई, और दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो वहां हिर्ज ही नहीं है। जब हिर्ज नहीं है, हिफाजत नहीं है, तो फिर चोरी के अंदर हाथ भी नहीं काटा जाएगा। और अगर हिर्ज हो भी, मसलन खावंद अलग घर में रहता है, बीवी अलग घर में रहती है, फिर भी दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी होती है। खावंद और बीवी बेतकल्लुफी से बगैर इजाजत के एक दूसरे के पास आते जाते हैं, तो जब बेतकल्लुफी से बगैर इजाजत के एक दूसरे के पास आते जाते हैं, तो वहां हिर्ज मौजूद नहीं, वहां हिफाजत मौजूद नहीं। जब हिर्ज मौजूद नहीं है, तो फिर चोरी के अंदर किसी का हाथ भी नहीं काटा जाएगा। इसी तरह गुलाम जो है, गुलाम अगर अपने आका से चोरी कर ले या गुलाम अपने आका की बीवी से चोरी कर ले, तो इस सूरत में भी गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि गुलाम के हक में यहां पर हिर्ज नहीं है। गुलाम बेतकल्लुफी से अपने आका के घर के अंदर आता जाता है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं, वह ईदा सरका अहदु ज़ौजैनी मिनल आखरी, और जब मियां बीवी में से एक ने चोरी कर ली दूसरे से, अविल अब्दु मिन सय्यिदिही, या गुलाम ने अपने आका से चोरी कर ली, औ मिनी मरअति सय्यिदिही, या गुलाम ने अपने आका की बीवी से चोरी कर ली, औ मिन ज़ौजी सय्यिदतिही, या अपने मालिकन के खावंद से चोरी कर ली। बराक सूरत है, यानी गुलाम है बीवी का और इसने, इस बीवी के गुलाम ने खावंद से चोरी कर ली, तो इस सूरत के अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इनमें बेतकल्लुफी होती है, बगैर इजाजत के घर में दाखिल होते हैं भाई। तो कहते हैं, औ मिन ज़ौजी सय्यिदती ही, या गुलाम ने अपनी मालिकन के खावन से चोरी कर ली, लम युक्ता, तो इन तमाम सूरतों के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। लिवजूद इल इज़्न बिदुखूल आदतन, इसलिए क्योंकि आदतन दाखिल होने की इजाजत होती है, इसलिए क्योंकि खावंद और बीवी में और इसी तरह गुलाम, इन सब में घर के अंदर दाखिल होने की आदतन इजाजत होती है, और जब इजाजत है तो हिर्स नहीं है, और जब हिर्स नहीं है तो माले महफूज नहीं है, जब माले महफूज नहीं है तो फिर उसके अंदर हाथ भी नहीं काटा जाएगा। वह इन सारा का अहद उस ज़ौजैनी मिन हिर्ज़िन ली आखरा खासतन ला यस्कुनानी फी। अच्छा भाई, अब सूरत यह है कि खावंद या बीवी का कोई खास हिर्ज है, मसलन बीवी का एक अलग कमरा है या एक अलग घर है जिसके अंदर खावंद को जाने की इजाजत नहीं है, तो अब यहां तो हिर्ज मौजूद है, तो यहां से अगर खावंद चोरी कर ले तो क्या उसका हाथ काटा जाएगा या नहीं। या इसका बरअक्स कर लें, खावंद का कोई खास कमरा है या खावंद का कोई अलग मकान है और वहां पर बीवी को जाने की इजाजत नहीं, तो अगर बीवी इस खावंद के खास हिर्स से चोरी कर ले तो क्या उसका हाथ काटा जाएगा या नहीं। तो याद रखना, हमारे नजदीक खावंद और बीवी का कोई अलग हिर्स हो, उससे भी दूसरा चोरी कर ले तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि खावंद और बीवी के दरमियान माल के अंदर कुशादगी होती है, बेतकल्लुफ से एक दूसरे का माल, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, और अमूमन मैंने बताया एक ही घर में रहते हैं, अगर घर अलग अलग हो फिर भी इनमें बेतकल्लुफी होती है, बगैर इजाजत के एक दूसरे के पास आते जाते हैं, तो इनके हक में हिर्ज ही मौजूद नहीं, जब हिर्ज मौजूद नहीं तो हाथ भी नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं, वह इन सारा का अहद उस ज़ौजैनी मिन हिर्ज़िन लि आखरा, और अगर मियां बीवी में से एक ने चोरी कर ली दूसरे के हिर्ज से, खासतन जो उसी दूसरे के साथ खास है, और ला यस्कुनानी फीही, और उसके अंदर ये दोनों नहीं रहते, यानी इन दोनों की रिहाइश उसके अंदर नहीं है, बीवी का एक अलग मकान है या बीवी का एक अलग कमरा है, उसके अंदर ये दोनों रहते भी नहीं है, वो बीवी का खास हिर्स है, फिर भी खावन वहां से चोरी कर ले तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वह इन सारा का अहद उस जाऊनी, और अगर मियां बीवी दोनों में से एक ने चोरी कर ली, मिन हिर्ज इन ली आखरा दूसरे के हिर्ज से, खास सतन जो खास उस दूसरे का हिर्ज है, मिन हिर्ज इन ली आखरा खास सतन जो खास तौर पर दूसरे का हिर्ज है, ला यस्कुना निफी ही, और उसके अंदर वो दोनों नहीं रहते, यानी उसके अंदर इन दोनों की रिहाइश नहीं है। तो इस खास हिर से अगर दूसरे ने चोरी कर ली, फकजाली कल जवाब वाइंदाना, तो इस सूरत में भी हमारा जवाब यही है, यानी हमारे नजदीक हाथ नहीं काटा जाएगा। खिलाफ अली शाफी रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्ला के। इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि मियां बीवी जो है एक दूसरे से चोरी कर ले तो उनका हाथ नहीं काटेंगे, लेकिन अगर किसी ने दूसरे के खास हिर्स से चोरी कर ली जिसके अंदर इसको दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, तो फिर इस सिलसिले में वो इख्तिलाफ करते हैं, और इस सिलसिले में उनके तीन कौल हैं। एक कौल के मुताबिक इसमें हाथ काटा जाएगा, और दूसरे कौल के मुताबिक इसमें भी हाथ नहीं काटा जाएगा, और तीसरे कौल के मुताबिक अगर चोरी करने वाली बीवी है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, और अगर चोरी करने वाला मर्द है तो फिर खावंद का हाथ काटा जाएगा। भाई तो कहते हैं फकदालिकल जवाब इंदना, तो इस सूरत में भी हमारा जवाब यही है, यानी हमारे नजदीक मसला इसी तरह है कि हाथ नहीं काटा जाएगा। खिलाफ अली शाफी रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्ला के, लिबुसूततिम बैनहुमा फिल अमवाल आदतन व दलालतन। भाई इमाम शाफी रहमहुल्ला का सिर्फ इख्तिलाफ जिक्र किया कि वो इस मसले में इख्तिलाफ करते हैं, आगे लिबुसूततिम बैनहुमा फिल अमवाल आदतन व दलालतन, ये हमारी दलील है। हमने क्या कहा कि मियां बीवी अगर दूसरे के खास हिर्ज से चोरी कर ले फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, उसकी वजह क्या है, वो दलील जिक्र कर रहे हैं, लिबुसूततिम बैनहुम माफिल अमवाली, इस वजह से कि मियां बीवी के दरमियान मालों के अंदर बेतकल्लुफी होती है, मियां बीवी के दरमियान माल के अंदर बेतकल्लुफी होती है, वसअत होती है, एक दूसरे का माल आम इस्तेमाल करते हैं। भाई तो कहते हैं लिबुसूततिम बैनहुमा फिल अमवाल आदतन व दलालतन, इस वजह से कि बेतकल्लुफी पाई जाती है मियां बीवी के दरमियान, फिल अमवाली मालों में, आदतन आदत के एतबार से भी, व दलालतन और दलालत के एतबार से भी, आदत के एतबार से भी मियां और बीवी के दरमियान मालों के अंदर बेतकल्लुफी होती है, एक दूसरे का माल एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, और दलालतन भी इन दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी होती है। भाई दलालतन क्या माना, कहते माना यह है कि इन दोनों के दरमियान अक़्द निकाह हुआ है, इस खावंद और बीवी ने तमाम जिंदगी मिलकर रहने का फैसला किया है, इन्होंने आपस में निकाह कर लिया है, तो ये निकाह दलालत कर रहा है कि इनके दरमियान मालों के अंदर बेतकल्लुफी है। भाई आततन भी इनमें बेतकल्लुफी होती है, और निकाह भी इस बात पर दलालत करता है कि इन दोनों में बेतकल्लुफी है। भाई बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिबुसूततिम बैनहुमा फिल अमवाल आदतन व दलालतन, इस वजह से कि बेतकल्लुफी पाई जाती है मियां बीवी के दरमियान मालों में, आदतन आदत के एतबार से भी, व दलालतन और दलालत के एतबार से भी, वह हुआ नजीरुल खिलाफ फी शहादती, और ये शहादत के अंदर इख्तिलाफ की नजीर है। इस मसले के अंदर हमारा इमाम शाफी रहमतुल्लाह से जो इख्तिलाफ है वो शहादत के मसले में इख्तिलाफ की नजीर है, यानी जैसे शहादत के मसले में हमसे वो इख्तिलाफ करते हैं। याद रखो शहादत यानी गवाही देना, खावन और बीवी जो हैं इनके मनाफे मुश्तरक हैं, एक का फायदा वो दूसरे का भी फायदा है, लिहाजा खावन और बीवी एक दूसरे के हक में गवाही देना चाहें तो इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। किसी मसले के अंदर खावंद को बीवी की गवाही की जरूरत पेश आ गई और बीवी गवाही देगी तो खावंद को फायदा होगा, तो याद रखो इस सूरत में खावंद के हक में बीवी की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। हां अगर खावंद या बीवी एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने आए फिर गवाही कबूल की जाएगी जी। तो खावंद और बीवी एक दूसरे के हक में गवाही दे तो कबूल नहीं की जाएगी, वजह यह कि दिलों में बदगुमानी आती है, मसलन बीवी गवाही दे रही है खावंद के हक में, तो दिलों में बदगुमानी आती है कि यह बीवी इसलिए खावंद के हक में गवाही दे रही है क्योंकि खावंद का फायदा दरअसल बीवी ही का फायदा है। तो यहां एक दूसरे के हक में गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है भाई। तो यह हमारे नजदीक है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मियां और बीवी की गवाही जैसे एक दूसरे के खिलाफ कबूल की जाती है इसी तरह एक दूसरे के हक में भी कबूल की जाएगी भाई। तो इसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं वह हुआ नजीर उल खिलाफ फी शहादती, और यह शहादत के अंदर इख्तिलाफ की नजीर है कि इस मसले में जो हमारा इमाम शाफी रहमतुल्लाह से इख्तिलाफ है यह नजीर है, ये यानी ये मिसल है उस इख्तिलाफ के जो शहादत के अंदर है भाई। आगे देखिए, वलौ सरकल मौला मिन मुकातबिही लम युक्ता लिअन्न लहू फी अक्साबिही हक्का भाई। सूरत ये, आका ने अपने मुकातब से कोई चीज चोरी कर ली, मुकातब वो गुलाम है जिसे आका ने अकदे किताबत कर लिया कि मसलन दो साल तक हर महीने एक एक लाख रुपया लेकर आओ और 24 लाख रुपए ये अदा कर दो तो तुम आजाद हो, और ये मुकातब जो है ये अब आजाद आदमी के दर्जे में है, आका इससे जबरदस्ती खिदमत नहीं ले सकता। तो ये मुकातब चला गया और ये अब पैसे कमाकर ला रहा है और किस्तवार अदायगी कर रहा है। तो आका ने मुकातब के माल में से कोई चीज चोरी कर ली तो क्या आका का हाथ काटा जाएगा? कहते हैं नहीं, इस मुकातब के माल में आका का हक है, मुकातब हर महीने पैसे लाकर अदायगी कर रहा है, तो मुकातब के माल में आका का हक है। जब इस माल के अंदर खुद आका का हक मौजूद है तो इस माल की चोरी में आका का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो कहते हैं वला उसरकल मौला मिम मुकातबी ही, और अगर आका ने अपने मुकातब से चोरी कर ली लम युक्ता तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा लिअन्न लहू फी अक्साबी ही हक्कन, इसलिए क्योंकि आका का उस मुकातब की कमाइयों के अंदर हक है। वकदालिका सारिकु मिनल मगनमी, और इसी तरह है वो जो चोरी करने वाला है माले गनीमत से। भाई याद रखो, माले गनीमत से अगर कोई शख्स चोरी कर लेता है तो इसके अंदर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि माले गनीमत के अंदर उसका अपना भी हक है। माले गनीमत क्या है? माले गनीमत में उस चोरी करने वाले का भी हक है, तो इसकी वजह से शुबा आ गया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। लेकिन यह याद रखना, माले गनीमत से चोरी के अंदर हाथ तब नहीं काटा जाएगा जब चोर भी वो लड़ने वालों में या लश्कर के अंदर शामिल था भाई, तवज्जो है। और अगर उसका हिस्सा नहीं था माले गनीमत के अंदर, वो तो लश्कर में शामिल ही नहीं था, तो फिर हाथ काटा जाएगा क्योंकि अब इस माल के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है भाई। तो कहते हैं वकदालिका सारिकु मिनल मगनमी, और इसी तरह वो शख्स जो चोरी करने वाला है माले गनीमत में से, यानी उसका भी हाथ नहीं काटा जाएगा लिअन्न लहू फीही नसीबन, इसलिए क्योंकि इसका उसके अंदर हिस्सा है। वह हुआ मासूरुन अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यही मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, दर व तालीलन, दर व तालीलन, दर अन का माना है टालना खत्म करना, और तालीलन का माना है इल्लत बयान करना। भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स को लाया गया कि इसने माले गनीमत से चोरी की है, तो आप फरमाने लगे लहू फीही नसीबुन, कि इसका भी उसके अंदर हिस्सा है। वह हुआ खाइनुन, और ये खाइन है, ये खयानत करने वाला है, यानी ये चोर नहीं, ये खयानत करने वाला है, इसके अंदर इसका भी हिस्सा है। फलम यक्तअहू, तो चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उसका हाथ नहीं काटा। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं वह हुआ मासूरुन अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यही मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, दर अन बैतबार टालने के, बैतबार टालने के, कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हद को टाल दिया था, उसका हाथ नहीं काटा था। तालीलन, और इल्लत बयान करने के एतबार से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही इल्लत बयान की थी कि इसका इस माल में हिस्सा है जी। बात समझ में आ गई? तो मसला क्या जिक्र हुआ कि माले गनीमत से अगर कोई शख्स चोरी कर लेता है और उसका भी हिस्सा था माले गनीमत में, तो इसका हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि ये चोर है ही नहीं, ये तो खाइन है, खयानत करने वाला है, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से यही मनकूल है। आपने हद को भी टाल दिया था और आपने इल्लत भी यही जिक्र की थी कि इसका इस माल के अंदर हिस्सा है भाई। तो यह माना है वह हुआ मासूर अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यही मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से दर अन टालने के एतबार से कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी गनीमत से चोरी के सिलसिले में हद को टाल दिया था भाई। वह तालीलन, और तालील के एतबार से यानी यही मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, तालील के एतबार से यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही इल्लत बयान फरमाई थी कि इस चोरी करने वाले का भी गनीमत के अंदर हिस्सा है, तो इसलिए आपने उसका हाथ नहीं काटा। आगे देखिए, قال بل حرز على نوعين حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور وحرز بالحافظ। भाई यहां पर बैन सुतूर वो दूसरा जाब्ता जिक्र है भाई। पहला जाब्ता क्या जिक्र हुआ था कि उस चोरी के अंदर हाथ काटा जाएगा जहां हिर्ज मौजूद हो, और अगर आने जाने में कुशादगी है, बेतकल्लुफी है, तो वहां हिर्ज नहीं, जब हिर्ज नहीं तो वहां पर हाथ भी नहीं काटा जाएगा। अब आपको बतलाने लगे हैं कि हिर्ज दो किस्म पर है भाई, एक हिर्ज बिल मकान है और एक हिर्ज बिल हाफिज है। हिर्ज बिल मकान यानी ऐसी चीज है कि उसकी जात में ही हिफाजत वाला माना पाया जा रहा है, जैसे मसलन घर, घर बनाया ही किस लिए जाता है, ताकि यहां पर इंसान अपनी चीजें हिफाजत से रख सके। ये इसी तरह दुकान जो है, दुकान की जात में ही हिफाजत वाला माना है, दुकान के अंदर ताजिर अपनी चीजें रखता है हिफाजत की नीयत से। और इसी तरह संदूक है, संदूक की जात में ही हिफाजत वाला माना है, संदूक के अंदर चीजों को महफूज करके रखा जाता है। तो ये सब क्या है, हिर्ज बिल मकान है, यानी ये जगह ही हिफाजत वाली है, मकान है या दुकान है या कमरा है या संदूक वगैरह, ये सब हिफाजत की जगह हैं भाई। तो ये हिर्ज बिल मकान है, और दूसरा हिर्ज बिल हाफिज है, यानी कोई हिफाजत करने वाला हो। मसलन देखो, एक शख्स मस्जिद में बैठा हुआ है और मस्जिद के अंदर उसका सामान उसके पास मौजूद है, याद रखो मस्जिद हिर्ज नहीं है, मस्जिद हिफाजत की जगह नहीं है, मस्जिद को इबादत के लिए बनाया गया है और यहां हर एक को आने की इजाजत होती है। जब हर एक को यहां आने की इजाजत है तो यहां तो किसी भी एतबार से हिर्ज नहीं है, किसी भी एतबार से हिफाजत नहीं है। तो मालूम हुआ मस्जिद जो है वो हिफाजत की जगह नहीं, लेकिन एक शख्स मस्जिद में बैठा है और उसका सामान उसके पास है और वो खुद सामान की हिफाजत कर रहा है, तो ये हिर्ज बिल हाफिज है जी। तो मस्जिद के अंदर अगर सामान मौजूद है तो यहां हिर्ज बिल मकान तो नहीं, लेकिन अगर मालिक उसके पास मौजूद है तो हिर्ज बिल हाफिज है भाई, हाफिज यानी हिफाजत करने वाला। और याद रखो किसी चोरी करने वाले का हाथ तब काटा जाएगा जब वो हिर्ज से माल को चोरी करे, चाहे हिर्ज बिल मकान हो चाहे हिर्ज बिल हाफिज हो। लिहाजा एक आदमी ने गली के अंदर कोई सामान रखा हुआ था और कोई शख्स आया और वो सामान उठाकर चला गया, तो याद रखो ये चोर अगर पकड़ा भी जाए और गवाह भी आ जाए फिर भी इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जो सामान इसने चोरी किया वो मुहर्रज नहीं था, वहां हिर्ज नहीं था, ना तो हिर्ज बिल मकान था, क्योंकि गली में सामान था, कमरे या मकान के अंदर नहीं था, और नीज कोई मुहाफिज भी वहां पर नहीं था, तो ना हिर्ज बिल मकान था और ना हिर्ज बिल हाफिज। तो हाथ उसी वक्त काटा जाएगा जब हिर्ज बिल मकान या हिर्ज बिल हाफिज से माल को चोरी कर लिया जाए। तो देखिए भाई, कहते हैं काला, काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल हिर्ज अला नौईन, के हिर्ज दो किस्म पर है, हिर्ज लिमानन फीही, एक वो हिर्ज है जो हिर्ज है ऐसे माना की वजह से जो उसकी जात में है, भाई मकान दुकान संदूक वगैरह इनकी जात में ही हिर्ज वाला माना है, तो ये हिर्ज हैं और इनकी जात में ही हिर्ज वाला माना है। यह माना है कि हिर्ज दो किस्म पर है, हिर्ज लिमानन फीही, एक वो हिर्ज है कि उसकी जात में ही हिर्ज वाला माना है, कल बुयूती जैसे कि कमरे हैं, व दूरी और जैसे कि घर हैं, दूर जमा है दार की, और वह हिर्ज बिल हाफिजी, और दूसरी किस्म जो है वह हिर्ज बिल हाफिज है। तो हिर्ज कितनी किस्म पर हुआ, दो, एक हिर्ज बिल मकान और एक हिर्ज बिल हाफिज। और हिर्ज बिल मकान किसे कहते हैं, कि उस चीज की जात में ही हिफ्ज वाला और हिफाजत वाला माना हो भाई। और याद रखना कि हिफ्ज बिल मकान वो कवी है और हिफ्ज बिल हाफिज वो ज़ईफ है। आगे देखिए, قال العبد الضعيف, عبد ضعيف से मुराद साहिब हिदाया है भाई। قال العبد الضعيف, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, الحرز لا بد منه, कि हिर्स का होना जरूरी है। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि चोरी के अंदर हाथ काटने का मामला है, लिहाजा यहां हिर्स का होना जरूरी है। हिर्स है और फिर चोरी की है तो हाथ काटा जाएगा, अगर हिर्स नहीं है और चोरी की है तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं, अल हिर्स ला बुद्द मिनहु, कि हिर्स का होना जरूरी है, लिअन अल इस्तिसरार ला यतहक्कु दूनहु। इस्तिसरार भाई, इस्तसर यस्तसिर, इस्तिसरार का माना है पोशीदा होना, छुपना। भाई आपने पढ़ा था चोरी की तारीफ के अंदर कि चोरी मालिक की निगाहों से छुपा कर होगी, तो इसके अंदर छुपाना जरूरी है, और छुपना और राजदारी से होना तभी होगा जब वहां हिर्स मौजूद हो। अगर हिर्स ही नहीं है, मकान के बाहर आपने एक चीज रखी हुई है और कोई उठाकर ले गया, तो यहां पर छुपा कर उठाने का माना नहीं है भाई, क्योंकि हिर्स मौजूद नहीं है भाई। कहते हैं अल हिर्ज़ु ला बुद्द मिन्हु, हिर्ज का होना जरूरी है, लिअन अल इस्तिसरारा, इसलिए क्योंकि राजदारी से होना, ला यतहक्कु दूनहु, यह हिर्ज के बगैर नहीं हो सकता। चोरी के अंदर राजदारी जरूरी है और बगैर हिर्ज के तो राजदारी नहीं हो सकती भाई। सुम्म हुवा कद यकूनु बिल मकानी, और फिर यह हिर्स कभी कभार मकान यानी जगह के जरिए होगा। वहुवल मकानुल मुअद्दु लिइहराज़िल अमतिअति, और वो मकान है, वो जगह है, अल मुअद्दु, जिसको तैयार किया गया है, लि इहराज़िल अमतिअति, सामानों की हिफाजत करने के लिए। अमतिया जमा है मता की, सामान को कहते हैं। तो फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं सुम्मा हुआ कद यकून बिल मकानी, फिर यह हिर्स कभी तो मकान यानी जगह के जरिए होगा। वह हुवल मकान उल मुअद्दु लिइहराज़िल अमतिअति, और वो हिर्स बिल मकान वो जगह है जिसको तैयार किया गया है सामान की हिफाजत के लिए। कद दूरी वल बुयूति वस्सुंदूक वल हानूत, कद दूरी जैसे के घर हैं, वल बुयूति और जैसे के कमरे हैं, वस्सुंदूकी जैसे के संदूक है, वल हानूत भाई, हानूत याद रखो दुकान को कहते हैं। तो ये घर, कमरे, संदूक और दुकानें, ये सब जो हैं ये हिर्ज हैं भाई, इनके अंदर चीजों को हिफाजत की नीयत से रखा जाता है। आगे देखिए, वकद यकून बिल हाफिजी, और कभी कभार हिर्स जो है वो हाफिज के जरिए होता है। कमन जल असफी तरीके औ फिल मस्जिदी, जैसे वो शख्स जो बैठा रास्ते में, औ फिल मस्जिदी या मस्जिद में, व इंदहू मताऊहू, और उसके पास उसका सामान है। एक आदमी मस्जिद में बैठा है, और मैंने आपको बतलाया मस्जिद तो हिर्स नहीं, लेकिन ये खुद अपने सामान के पास बैठा हुआ है, तो यहां कौन सा हिर्स है? हिर्स बिल हाफिज है भाई। या कोई शख्स गली में बैठा हुआ है, और गली तो हिर्स नहीं है जी। रास्ते में कोई शख्स बैठा है और रास्ता तो हिर्स नहीं है, लेकिन खुद वो सामान के पास मौजूद है, तो वहां हिर्स बिल हाफिज मौजूद है भाई। तो कहते हैं वकद यकून बिल हाफिजी, और कभी कभार हिर्स जो है हिफाजत करने वाले के जरिए होता है। कमन जला सफित तरीकी, जैसे वो शख्स जो रास्ते में बैठा, औ फिल मस्जिदी या मस्जिद में बैठा, व इंदहू मताऊहू, और उसके पास उसका सामान है, फहुआ मुहरजुम बिही, तो ये सामान जो है उस बैठने वाले के जरिए महफूज है। وقد قطع رسول الله عليه الصلاة والسلام من سرق رداء صفوان رضي الله تعالى عنه من تحت رأسه وهو نائم في المسجد। भाई हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुसलमान हुए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, और यहां अब हिजरत करके आए हैं, कोई जगह वगैरह तो है नहीं, मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं, तो सर के नीचे चादर थी और ये सोए हुए थे। तो एक शख्स आया और उसने वो चादर निकाल ली, और हज़रत सफ़वान रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदार हो गए और उसको पकड़ लिया, चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उस चोर का हाथ कटवा दिया भाई। अब देखो, हालांकि हज़रत सफ़वान रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में मौजूद हैं, और मस्जिद तो हिर्ज़ नहीं, हिफाजत की जगह नहीं, लेकिन खुद वो हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद मौजूद हैं हिफाजत के लिए, तो यहां हिर्स बिल हाफिज था, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस चोर का हाथ कटवा दिया भाई। तो कहते हैं वक़द कता रसूलुल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलामु, और तहकी कता फरमाया हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने, मन सारका रिदा असफवाना, उस शख्स को जिसने चोरी की थी हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर, मीन तहते रसी ही उनके सर के नीचे से, वह हुआ नाइमुन फिल मस्जिद, इस हाल में कि वो मस्जिद में सोए हुए थे। तो यहां हिर्स बिल मकान तो नहीं था, लेकिन हिर्स बिल हाफिज था भाई। अगर हिर्स बिल हाफिज भी ना होता फिर याद रखो फिर हाथ नहीं काटा जा सकता। आगे देखिए भाई, वफिल मुहरज बिल मकानी ला युअतबरुल इहराज बिल हाफिज। यहां देखिए बैन सुतूर तीसरा जाब्ता जिक्र फरमाया है उलमा ने भाई। पहला जाब्ता यह था कि हिर्स से चोरी के अंदर हाथ काटा जाएगा, लेकिन अगर उस हिर्स के अंदर कोई शख्स बेतकल्लुफी से दाखिल होता है तो उसके हक में वो हिर्स ही ना रहा, लिहाजा उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। और दूसरा जाब्ता ये बतलाया आपको कि हिर्स जिस नौ का भी हो, चाहे हिर्स बिल मकान हो चाहे हिर्स बिल हाफिज हो, जिससे भी कोई शख्स चोरी कर लेगा उसका हाथ काटा जाएगा। अब तीसरा जाब्ता बयान फरमा रहे हैं यहां पर, याद रखो तीसरा जाब्ता यह है कि हिर्स बिल मकान वो है असल और हिर्स बिल हाफिज यह है फरा। हिर्स बिल मकान असल है और हिर्स बिल हाफिज फरा है, लिहाजा जहां पर हिर्स बिल मकान होगा वहां हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं। जहां पर भी हिर्स बिल मकान होगा वहां हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं। देखो मिसाल से वजाहत होगी, एक आदमी ने कमरे के अंदर सामान रखा हुआ है, एक चोर आया और उसने वो सामान चोरी कर लिया, तो देखो उसने हिर्स बिल मकान से चोरी की है लिहाजा उसका हाथ काटा जाएगा। दूसरी सूरत, एक आदमी है वो मस्जिद के अंदर बैठा है और उसने अपना सामान पास ही रखा हुआ है, वो उसकी हिफाजत कर रहा है, एक चोर आया और उसका ये सामान उठाकर ले गया, तो इस चोर का भी हाथ काटा जाएगा क्योंकि उसने हिर्स बिल हाफिज से चोरी की है। तवज्जो है। तीसरी सूरत यह है कि एक आदमी जो है उसने दूसरे आदमी को अपने कमरे के अंदर आने की इजाजत दे दी और वो शख्स अंदर आया और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो गया तो पता चला उसने एक चीज चोरी कर ली है जी। तो याद रखो अब इस सूरत के अंदर इस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जी। एक आदमी अपने कमरे के अंदर खुद एक दूसरे आदमी को ले आता है, जब उस आदमी को वो अंदर ले आया तो अब हिर्स ना रहा उसके हक में। ये कमरा तो क्या था, हिर्स था, हिफाजत की जगह था, लेकिन जब इसने खुद ही उस चोर को अंदर दाखिल किया, इसके खुद ही उसको ले आया, मसलन मेहमान बनाया या कोई भी सूरत थी, तो अब उस चोर के हक में ये हिर्स ना रहा और फिर चोर यहां से एक चीज चोरी करके ले गया जी। तो अब आप उसका हाथ नहीं काट सकते क्योंकि हिर्स बिल मकान नहीं, आपने खुद हिर्स को क्या कर दिया उसके लिए खत्म। आप कहेंगे भाई मैं खुद वहां पर मौजूद था, मैं बैठा हुआ था, मेरी जरा इधर उधर तवज्जो हुई और वो चोरी करके चला गया, तो हिर्स बिल मकान तो नहीं था यहां पर, लेकिन हिर्स बिल हाफिज तो था जी। हिर्स बिल मकान तो नहीं था, मैं खुद उसको अंदर ले आया कमरे के, लेकिन हिर्स बिल हाफिज तो है, मैं तो यहां मौजूद हूं अपनी चीजों की हिफाजत कर रहा हूं। कहते हैं नहीं भाई, जहां हिर्स बिल मकान मौजूद हो वहां हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं। तो ये जो कमरा है ये क्या था, हिर्स बिल मकान, जब हिर्स बिल मकान मौजूद है तो हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं। आप यहां हो या ना हो, जब आपने एक आदमी को अंदर आने की इजाजत दे दी तो आप ये उसके लिए हिर्स ना रहा, जब हिर्स ना रहा और चोरी करके ले गया तो ये चोरी उसने किससे की है, गैर हिर्स से की है, किससे, गैर हिर्स से, और हिर्स बिल हाफिज अगरचे है लेकिन उसका एतबार नहीं क्योंकि हिर्स बिल मकान असल है और जहां हिर्स बिल मकान मौजूद हो वहां हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं जी। बात समझ में आ गई। लिहाजा एक आदमी दुकान के अंदर बैठा हुआ है, सामान बेच रहा है, चोर आया और उसने उससे बातें की और चंद मिनटों के बाद चोर उठकर चला गया, बाद में देखा गया तो चोर उसके कीमती चीजें उठाकर ले जा चुका था। याद रखो इस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता जी। इस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, क्यों, क्योंकि दुकान के अंदर आम लोगों को आने की इजाजत होती है दिन के दौरान जी। दिन के वक्त आम लोगों को दुकान में आने की इजाजत होती है, मालूम हुआ यह जगह तो हिर्स थी, यह कमरा यह दुकान तो हिर्स थी, लेकिन आपने लोगों को इजाजत दी हुई है आने की, तो अब यह हिर्स ना रहा। अब आप बेशक खुद मौजूद हैं, आपने कैमरे भी लगाए हुए हैं, गनमैन भी आपके खड़े हैं, लेकिन यहां हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं। जब लोग अंदर आ गए, जब लोगों को अंदर आने की इजाजत है, तो हिर्स बिल मकान ना रहा। जब हिर्स बिल मकान ना रहा, अब यहां से कोई शख्स चोरी करके ले जाएगा तो उसका हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि हाथ तब ही काटा जाएगा जब हिर्स बिल मकान से चोरी करे या हिर्स बिल हाफिज से, और यहां हिर्स नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वफिल मुहरजी बिल मकानी ला युअतबरुल इहराजु बिल हाफिजी, वफिल मुहरजी बिल मकानी, और वो चीज जो महफूज है बिल मकानी मकान के जरिए यानी जगह के जरिए, ला युअतबरुल इहराजु बिल हाफिजी, तो वहां इहराज बिल हाफिज का एतबार नहीं। वो चीज जो मकान के जरिए महफूज है यानी हिर्स बिल मकान है उसमें, तो वहां पर हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वफिल मुहरजी बिल मकानी ला युअतबरुल इहराज बिल हाफिजी, और मुहरज बिल मकान के अंदर इहराज बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं है। वहुवा सहीह, और यही कौल सहीह है भाई। लिअन्नहु मुहरजुम बिदूनिही, इसलिए क्योंकि ये चीज हाफिज के बगैर ही महफूज है भाई। आपने जब कमरे के अंदर चीजें रखी हुई हैं तो ये कमरा किस लिए है? हिफाजत के लिए। तो हाफिज के बगैर ही ये चीजें महफूज हैं भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु मुहरजुम बिदूनिही, इसलिए क्योंकि ये चीज जो है वो मुहाफिज के बगैर ही महफूज है। वहुवल बैतु, और वो कमरा है, मिसाल के तौर पर कमरा है, कमरे के अंदर अब सामान है। तो कहते हैं वहुवल बैतु, और वो कमरा है मिसाल के तौर पर। वह इल्लम यकुन लहू बाबुन, अगरचे उस कमरे का कोई दरवाजा ना हो भाई। ये कमरा है, उसका दरवाजा नहीं है। यह दरवाजा तो है लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। अब एक आदमी अंदर गया और चोरी करके चला गया तो याद रखो हाथ काटा जाएगा। आप यह ना कहें कि दरवाजा खुला हुआ था या दरवाजा टूटा हुआ था। नहीं भाई, जो इमारत बनाई जाती है उसका दरवाजा हो या ना हो, वहां मकसद हिफाजत ही होती है भाई, कि वहां पर चीजों की हिफाजत की जाए। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह हुआ सहीह, यही कौल सही है, यानी हिर्स बिल मकान के होते हुए हिर्स बिल हाफिज का कोई एतबार नहीं। लिअन्नहु मुहरजुम बिदूनिही, इसलिए क्योंकि वो चीज बगैर मुहाफिज के ही महफूज है। वो चीज बगैर मुहाफिज के ही महफूज है। वह हुआ बैतु, और वो कमरा है मसलन, यानी कमरे के जरिए वो चीज क्या है, वो कमरे के जरिए वो चीज महफूज है। वह इल्लम यकुन लहू बाबुन, अगर जो उस कमरे का दरवाजा ना हो। औकाना, या दरवाजा तो हो। वह हुआ मफ्तूहुन, लेकिन इस हाल में कि वो दरवाजा खुला हुआ हो। हत्ता युक्ता उस्सारिकु मिन्हु, यहां तक कि उससे चोरी करने वाले को कता किया जाएगा। चाहे दरवाजा ना भी हो या दरवाजा खुला हुआ हो, फिर भी यह मकान और जगह किस लिए है? यह हिफाजत के लिए है भाई। याद रखो यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा भाई, क्योंकि हत्ता के नसब के लिए दो शर्तें मैंने बतलाया भाई। एक तो यह कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए, माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और नीस वहां हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे भाई। तो कहते हैं हत्ता युक्ता उस्सारिकु मिन्हु, यहां तक इसे चोरी करने वाले को कता किया जाएगा यानी उसका हाथ काटा जाएगा। लिअन्नल बिना अलिकस्दिल इहराजी, बिना कहते हैं इमारत को। लिअन्नल बिना आ, इसलिए क्योंकि इमारत जो होती है लिकस्दिल इहराजी, वह हिफाजत के इरादे से होती है। इमारत को बनाया ही किस लिए जाता है? हिफाजत के इरादे से। इल्ला अन्नहु ला यजिबुल कत्उ इल्ला बिल इखराज मिन्हु, हां कीमती जाब्ता याद रखना, मसलन कमरे के अंदर दाखिल हो गया चोर और उसने सामान उठा लिया, अभी वो सामान लेकर उस कमरे से नहीं निकला था कि उसे पहले ही मालिक भी पहुंच गया जी। चोर ने वो सारा सामान सर पर उठाया हुआ है, लेकिन याद रखो चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जी। क्यों? वजह यह क्योंकि चोर ने अभी तक हिर्ज को नहीं तोड़ा जी। चोर ने अभी तक हिर्ज को नहीं तोड़ा। चोर जब हिर्ज को तोड़ देगा फिर उसका हाथ काटा जाएगा, और हिर्ज का तोड़ना तब है जब वो सामान लेकर उस जगह से निकल आए। जब वो उस कमरे से या उस जगह से सामान लेकर निकल आए तो अब हम कहेंगे कि चोर ने हिर्ज को तोड़ दिया, चोर ने हिर्ज की बेहुर्मती कर दी भाई, लिहाजा इसका हाथ काटा जाएगा। लेकिन अगर चोर अभी अंदर ही है और उसने सारा सामान सर पर उठा लिया, अभी बाहर नहीं निकला था कि मालिक पहुंच गया, तो इस सूरत में चोर को और सजा तो दी जा सकती है लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि क्योंकि हिर्ज बिल मकान तब टूटता है जब वो चीज उस हिर्ज से बाहर निकाल ली जाए भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु ला यजिबुल कत्उ, मगर यह कि इसमें हाथ काटना वाजिब नहीं होता, इल्ला बिल इखराज मिनहु, मगर उससे चीज के निकाल देने से, लिकियामी यदिही कबलहु, इस वजह से कि मालिक का कब्जा कायम है उससे पहले। भाई जब तक चोर उस चीज को उस घर से बाहर लेकर नहीं निकलेगा तब भी यूं ही समझा जाएगा अभी भी ये चीज मालिक ही के कब्जे में है भाई, मकान के अंदर है तो गोया मालिक के कब्जे में है। तो कहते हैं लिकियामी यदिही कबलहू, इस वजह से कि वो साहिब मकान का कब्जा मौजूद है उससे पहले, यानी बाहर निकालने से पहले, बिखिलाफ इल मुहरजी बिल हाफिज, हां मुहरज बिल हाफिज, भाई एक है मुहरज बिल मकान, एक है मुहरज बिल हाफिज। मुहरज बिल मकान उसमें हिर्ज कब टूटेगा, जब चोर वो सामान उठाकर उस जगह से बाहर निकल आए, जबकि मुहरज बिल हाफिज जो है उसमें चोर जैसे ही उस चीज को उठाएगा साथ ही हिर्स को उसने तोड़ दिया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा।
जी।
जैसे हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु की चादर एक चोर ने चुराई भाई, और चोर अभी वहीं पर था उसी वक्त हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदार हुए और उसको पकड़ लिया, तो चोर ने सिर्फ उस चादर को उठाया था, अभी वो मस्जिद से भी नहीं निकला, लेकिन लेकिन यहां हिर्स कौन सा था, हिर्स बिल हाफिज था, और हिर्स बिल हाफिज के अंदर हिर्स कब टूटेगा, जब चोर उस चीज को उठा ले। जबकि हिर्स बिल मकान में हिर्स कब टूटेगा, जब चोर उस चीज को लेकर बाहर निकल जाए। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मुहरजी बिल हाफिजी, बखिलाफ उस चीज के जिसके हिफाजत की गई है हिफाजत करने वाले के जरिए, है सुयज बुल कतोफी ही कमा आखाजा, क्योंकि इसके अंदर हाथ का काटना वाजिब हो जाएगा, कमा आखाजा जैसे ही चोर उसको ले ले, लिजवालियत इल मालिक, इस वजह से कि मालिक का कब्जा खत्म हो गया, बि मुजर्रद इल अखजी, सिर्फ उठाने से ही।
जी।
मकान के अंदर चोर ने सामान उठाया था तो जब तक वो मकान से बाहर लेकर नहीं निकला अभी भी मालिक का कब्जा खत्म नहीं, लेकिन जब हिर्स बिल हाफिज हो तो वहां जैसे ही चोर ने उस चीज को उठाया तो मालिक की हिफाजत और मालिक का कब्जा खत्म हो गया। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मुहरजी बिल हाफिजी, बखिलाफ वो चीज जिसकी हिफाजत की गई है हिफाजत करने वाले के जरिए, है सुय जिबुल कतूफी ही कमा अखजा, क्योंकि इसके अंदर कता वाजिब हो जाती है जैसे ही चोर उस चीज को उठा ले, लिजवालिय दिल मालिक की भी मुजर्रदिल अखजी, बवजह मालिक के कब्जे के खत्म हो जाने के, भी मुजर्रदिल अखजी, सिर्फ उठा लेने से ही, फयतिम मुसरिकतु, तो चोरी पूरी हो गई, चोर ने जैसे ही वो चीज उठाई तो चोरी पूरी हो गई। वला फर्क बैन अन यकून अल हाफिज मुस्तैकिजन औ नाइमा, भाई सूरत यह है एक जगह पर हिर्स बिल हाफिज है, एक आदमी अपने सामान की हिफाजत कर रहा है, मस्जिद में है या रास्ते में है, और यही शख्स अपने सामान के साथ ही सो गया, ये शख्स अपने सामान के साथ ही सो गया और फिर कोई चोर आया और यह सामान उठा कर ले गया, तो क्या अब यहां हिर्स बिल हाफिज है या नहीं। कहते हैं भाई जब हिफाजत करने वाला सामान के साथ सोया हुआ है तो उर्फ के अंदर इसको हिफाजत करने वाला ही शुमार किया जाता है कि ये क्या कर रहा है, अपने सामान की हिफाजत कर रहा है, लिहाजा मालूम है चोर ये जो सामान उठाकर लेकर गया और मालिक सोया हुआ था ये उसने हिर्स से माल चोरी किया है, लिहाजा इसका भी हाथ काटा जाएगा भाई। तो कहते हैं वला फर्क बैन अन यकून अल हाफिज मुस्तैकिजन औ नाइमा, और इस बात में कोई फर्क नहीं है कि हिफाजत करने वाला बेदार हो या सोया हुआ हो, वल मताउ तहतहु औ इंदहु, और वो सामान उसके नीचे हो या उसके पास हो, एक आदमी सोया हुआ है चाहे सामान उसके नीचे है चाहे उसके पास है, तमाम सूरतों में इसको हिफाजत करने वाला ही शुमार किया जाता है। तो कहते हैं, और इस बात में कोई फर्क नहीं है कि हिफाजत करने वाला बेदार हो या सोया हुआ हो, वल मता उतहता हो और इंदा हो, और वह सामान उसके नीचे हो या उसके पास हो, इसमें कोई फर्क नहीं। हुआ सहीह, यही कौल सहीह है। लिअन्नहु युअद्दुन्ना इमो इंदा मताईही, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो अपने सामान के पास सोया हुआ होता है उसको शुमार किया जाता है, हाफिजन लहू, कि वो इस सामान की हिफाजत कर रहा है, फिल आदती, आदत में, आम लोगों की आदत में और उर्फ में इसको हिफाजत करने वाला ही शुमार करते हैं। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्नहु युअद्दुन्ना इमु इंदा मताईही, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो अपने सामान के पास सोया हुआ है उसको शुमार किया जाता है, क्या शुमार किया जाता है, हाफिजन लहू, कि वो इस सामान की हिफाजत कर रहा है, फिल आदती, आदत में यानी उर्फ के एतबार से, आम लोगों के उर्फ में इसको हिफाजत करने वाला ही शुमार किया जाता है। वाला हादा ला यजमनुल मुदऊ अल मुस्तईर बिमिस्लिही, और इसी वजह से जामिन नहीं होगा मुदा और मुस्तईर इस जैसी सूरत के अंदर। भाई देखो यहां लफ्ज आया मुदा, भाई मुदा भाई ईदाअन का माना है किसी के पास अमानत रखवाना, तो जो अमानत रखवाने वाला है वो है मुदिअ, इसमें फाइल, और जिसके पास अमानत रखवाई वो है मुदा भाई, इसमें मफूल है। तो सूरत ये, एक शख्स जो है उसने दूसरे के पास अपनी अमानत रखवाई, और वो जो मुदा है उसने वो अमानत अपने पास रखी और वो उसके साथ सो गया, गैर हिर्स में, यानी रास्ते में या मस्जिद वगैरह के अंदर, तो ये अपने पास रखकर सो गया और कोई चोर आया और वो सामान चुरा कर चला गया, तो क्या इस मुदा को कोताही करने वाला शुमार किया जाएगा कि इसने सही हिफाजत नहीं की लिहाजा इसको जमान देना पड़ेगा, या इसको कोताही करने वाला शुमार नहीं करेंगे? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि हमने आपको बतला दिया कि उर्फ के अंदर जब कोई शख्स अपने सामान के पास सोया हुआ हो तो उसको हिफाजत करने वाला ही शुमार किया जाता है, लिहाजा ये जो मुदा अमानत के साथ सोया हुआ था इस पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि जब यह सामान के साथ सोया हुआ है तो आदतन इसको हिफाजत करने वाला ही शुमार किया जाता है। इसी तरह मुस्ताईर भाई, मुस्ताईर वो है जो आरियतन किसी से कोई चीज मांगे, मसलन आपसे कोई साथी साइकिल मांग कर ले गया इस्तेमाल के लिए, या जैसे घरों के अंदर इस्तेमाल के लिए बर्तन मांग लिए जाते हैं, इसको आरियत कहते हैं। अब सूरत ये, एक आदमी ने दूसरे से कोई चीज आरियतन मांगी इस्तेमाल के लिए, और फिर ये मुस्ताईर जो है इस चीज के पास ही सो गया, गैर हिर्स में, यानी रास्ते में या मस्जिद वगैरह के अंदर, और कोई चोर आया और उसने सामान चोरी कर लिया, तो क्या इस मुस्ताईर पर जमान आएगा, क्या इसने कोई कोताही की है? कहते हैं नहीं, इसने कोई कोताही नहीं की, अपने सामान के पास सोने वाले को हिफाजत करने वाला ही शुमार किया जाता है। भाई तो ये माना है वाला हादा ला यजमनुल मुदाऊ वल मुस्ताईर बिमिस्लिही, और इसी वजह से जामिन नहीं होगा मुदा भी और मुस्ताईर भी, बिमिस्लिही, इस जैसे नींद की सूरत में इन पर जमान नहीं आएगा। लिअन्नहु लैसा बितज़यीइन, इसलिए क्योंकि यह जाया करना नहीं है। मुस्ताईर उस आरियत चीज के पास सोया हुआ है या मुदा उस अमानत के साथ सोया हुआ है, तो हम यह नहीं कहेंगे कि इसने दूसरे की अमानत जाया कर दी, बल्कि हम कहेंगे यह उसकी हिफाजत कर रहा था। भाई तो यह माना है लिअन्नहु लैसा बितज़यीइन, इसलिए क्योंकि यह जाया करना नहीं है। मुदा या मुस्ताईर इस तरह चीज के साथ सो जाए तो इसको जाया करना नहीं कहते, तो कहते हैं लिअन्नहु लैसा बितज़यीइन, इसलिए क्योंकि यह जाया करना नहीं है। बिखिलाफ मख्तारहु फिल फतावा, बखिलाफ उसके जिसको फतावा में इख्तियार किया है, बखिलाफ उसके जिसको फतावा में इख्तियार किया है, साहिब हिदाया ने सराहत नहीं की कि इससे कौन से फतावा मुराद हैं, कौन से फतावा मुराद हैं। लेकिन उलमा लिखते हैं, मुहशी हजरात फरमाते हैं कि साहिब हिदाया का इशारा फतावा जहीरिया की तरफ है, साहिब हिदाया का इशारा फतावा जहीरिया की तरफ है। ये कदीम फतावा है भाई, और इन फतावा के अंदर यह मसला लिखा हुआ है कि अगर मुदा जो है उसने इस तरह अमानत अपने पास रखी और यह सो गया, गैर हिर्स में, यानी रास्ते में या मस्जिद वगैरह के अंदर, तो इस पर जमान आएगा क्योंकि इसने इस चीज की हिफाजत नहीं की। तो साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि हमने आपको बतला दिया कि अगर मुदा जो है वो अमानत के साथ सो जाए गैर हिफ्ज के अंदर तो भी इसने किसी किस्म की कोताही नहीं की, इसको हिफाजत करने वाला ही शुमार करेंगे और इस पर जमान नहीं आएगा। लेकिन फतावा में इसके बरखिलाफ लिखा है, साहिब फतावा ने लिखा है कि इस मुदा पर जमान आएगा। बात समझ में आ गई, यह माना है। कहते हैं बिखिलाफ मख्तारहू फिल फतावा, बखिलाफ उसके जिसको साहिब फतावा ने फतावा में इख्तियार किया है। यानी हमने तो आपको राजह कौल बतला दिया भाई कि मुदा पर इस सूरत में जमान नहीं आएगा, लेकिन साहिब फतावा ने फतावा के अंदर इसके बरखिलाफ कौल को इख्तियार किया है कि मुदा पर इस सूरत में जमान आएगा। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।